ओम शांति, ओम शांति। आप सभी पिछले 3 दिन से, आज आपका 3rd day है इस कोर्स का, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में आप सभी आए हुए हैं और बहुत सारे सेशंस में आपको स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, राजयोग का मेडिटेशन क्या है उसके विषय में बताया गया है। और शायद आप में से बहुत से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं। तो कई बार आध्यात्मिक विषय को सुनते हुए आप सभी के मन मस्तिष्क पर बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर आ रहे होंगे और आप सभी के वही दिल के उद्गार, मन के क्वेश्चंस हम सभी के पास पहुंचे हैं। और आज ये जो पैनल डिस्कशन हम सभी सुनेंगे, इसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो सभी फौज से ही हैं विशेष, और उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया, प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने डेली रूटीन में, तो आज हम इन्हीं के मुख से इन्हीं के अनुभव सुनेंगे। तो सबसे पहले जोरदार तालियां आज के हमारे इन तीनों गेस्ट के लिए। तो सबसे पहले जो सेंटर में हमारे ब्रिगेडियर हरबीर भाई जी बैठे हैं, वो विशेष इंडियन आर्मी से हैं और प्रेजेंटली उनकी पोस्टिंग रोहतक में है और ब्रिगेडियर पद पर वो अभी हैं। और उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। ब्रिगेडियर हरबीर भाई, आपने विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल प्राप्त किया है, जोरदार तालियां। आपने कमीशन आर्मी में प्राप्त किया था 25 अगस्त 1990 को और आप सिखलाई रेजिमेंट से हैं और विशेष आपकी उपलब्धता इस बात में है कि ब्रिगेडियर पद पर रहकर और विशेष आर्मी के इस कैरियर में आपकी जेएन के ऐसे रिमोट एरिया में भी पोस्टिंग रही है, तो आज वे अपना अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां ब्रिगेडियर हरबीर भाई जी के लिए, आपका वेलकम भाई साहब। और हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान, आप भी विशेष इंडियन आर्मी से हैं, आप अभी रिटायर्ड हैं और आपने लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर अपनी सेवाएं लेह लद्दाख में भी दी हैं। और आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, आपने 25 ईयर्स आर्मी में सेवाएं दी और आर्मी में विशेष ऑर्डिनेंस कॉप्स में जून 1996 में आपने कमीशन प्राप्त किया था। आपने मिलिट्री एकेडमी देहरादून से स्पेशलिस्ट आप वहां से हुए हैं और लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी विशिष्ट सेवाएं आपने दी हैं, आज वे भी अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। और आज के हमारे तीसरे गेस्ट से तो आप जरूर रूबरू हो चुके हैं, हमारे इंस्पेक्टर बी के संजीव भाई जो विशेष दिल्ली पुलिस से हैं और वर्तमान में आपकी जो पोस्टिंग है वो पीटीसी झड़ोदा कला में है, आपका भी भाई साहब बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम। तो आज विशेष इस पैनल डिस्कशन में आपको इस बात से अवगत कराया जाएगा कि आज जो हम ये कोर्स यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, क्या वाकई में ये 4 दिन का ही कोर्स है या हम इसको अपने जीवन का कोर्स बना सकते हैं। तो जरूर ये जो गेस्ट आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, इन्होंने जरूर इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है, तो कैसे इम्प्लीमेंट किया है कुछ क्वेश्चंस आपके ही हम पूछने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं जरूर हमारे ब्रिगेडियर हरबीर भाई से पूछना चाहूंगी। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने पिछले 30 वर्षों में आर्मी में बहुत सी सेवाएं दी हैं, वर्तमान में आप ब्रिगेडियर पद पर आसीन हैं और हमने सुना कि 3 साल आपने अपना जो टेन्योर पूरा किया वो जे एन के में टेन्योर पूरा किया, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे अपने ऑडियंस की तरफ से, क्या आध्यात्मिक ज्ञान कभी ऐसा आपके साथ एक कोई अनुभव रहा हो शायद मिलिटेंसी के दौरान या जेएनके में, कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन ने आपको उस विशेष समय पर बहुत बहुत बेनिफिट दिया हो, तो क्या आपके पास ऐसा अनुभव है?
थैंक यू बहन जी, जय हिंद, ओम शांति। मेरे को इस ज्ञान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज से 27 साल पहले 1996 में, और तब से मेरे जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आए, और हर चीज जिसको करने में पहले मेहनत लगती थी वो चीजें ऐसा लगा जैसे अपने आप ही होती चली गई, चाहे प्रोफेशन की हो चाहे पर्सनल लाइफ की हो। मैं आपने कारगिल वॉर का बारे में तो सबने सुना होगा, कारगिल वॉर के बारे में किस किसने सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है। तो मेरे को सौभाग्य मिला कारगिल वॉर में हिस्सा लेने का। तो कारगिल वॉर में कैसे जो हमारा बैटल था कैसे वो लड़ा गया और कैसे उसमें राजयोगा मेडिटेशन ने मेरे को हेल्प किया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो कारगिल वॉर लड़ा गया था मई 1999 में, और जैसे आप जो उस टाइम पे न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो सबसे पहले ये लग रहा था कि शायद कोई घुसपैठ ही आके बैठे हुए हैं वहां पर पहाड़ियों के ऊपर। और 27 मई को जब हमारे दो फाइटर एयरक्राफ्ट नीचे गिराए गए, उसमें एक स्क्वाड लीडर आहूजा शहीद हो गए, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता पकड़े गए, तब ये हमको एहसास हुआ कि ये कोई घुसपैठ ही नहीं है, ये प्रॉपर इंडियन पाकिस्तान आर्मी हमारे हिस्से में आकर हमारी पोस्टों के ऊपर बैठी हुई है। तो ऐसा ही एक तुर्तुक सेक्टर में तकरीबन 20-21 पोस्ट हैं जो हमारी हम सर्दियों में खाली कर देते थे और उन पर पाकिस्तानियों ने आके पूरा कब्जा कर लिया था। उस सेक्टर में एक ऐसी पोस्ट थी जो बहुत ही मुश्किल थी और बहुत ही ऊंची थी और उसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं बैठ पाए थे, और वो एक स्ट्रेटेजिक तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट वो पोस्ट थी। वो तो इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन प्लान थी कि कैसे भी करके हम इस पोस्ट को कब्जा करें, क्योंकि बाकी जितनी भी पोस्टों पर हम कब्जा करने के लिए गए हर जगह क्योंकि दुश्मन बैठा हुआ था वहां से फायरिंग आई और कैजुअलिटी हमको काफी सफर करनी पड़ी। और इस पोस्ट के लिए भी दो बार हमने अपने बेस्ट कमांडोज लगा के कोशिश किया इंडियन आर्मी ने, और दोनों बार सफलता हासिल नहीं हुई बल्कि कैजुअलिटी ही हमको मिली। जब वहां पर यह सिचुएशन आई हुई थी तो फिर एक बार फिर ये सोच विचार हुआ कि इसमें हम पूरे सभी न सिर्फ आर्मी के बाकी भी सर्विसेज में जो बेस्ट माउंटेनियर्स हैं उनको इकट्ठा करें और फिर जो एक पोस्ट जिसपे पाकिस्तान नहीं था बहुत मुश्किल पोस्ट थी वो एक उसको कब्जा करने की कोशिश करें। और मैं उस टाइम यंग कैप्टन था तो मेरे नीचे 10 बेस्ट माउंटेनियर्स इकट्ठे किए गए और ये हमको टास्क मिला कि ये आपने एक तीसरा अटेम्प्ट करना है इस पोस्ट को कब्जा करने का, पर दो अटेम्प्ट उसे फेल हो चुके थे, कैजुअल्टी भी हुई थी। ये जो पोस्ट थी ये थी तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जैसे आप सब जानते हैं उस इलाके में तकरीबन 14,000 फीट से ग्लेशियर शुरू हो जाता है, बर्फ शुरू हो जाती है, और जो बेस था वो तुर्तुक था, वहां 10,000 फीट के ऊपर रोडेड था जहां बेस था, और वहां से हमने 10,000 से चलकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था। और वहां पर क्योंकि पहले ऐसे कोई एडम बेस वगैरह नहीं थे रास्ते में, तो पूरा का पूरा जो हमको सामान चाहिए था वहां तक पहुंचने के लिए और वहां पहुंचने के बाद वो खुद ही अपने साथ लेके जाना था। तो हमारे हरेक के ऊपर ये लगा लो अम्युनिशन, वेपन, टेंटेज, केरोसिन ऑयल, माउंटेनियर इक्विपमेंट, ये तकरीबन 40-40 केजी का पिट्ठू में हमारे सामान था। और हम 10 बंद जो मैं और मेरे साथ एक जैसे और 10 जवान हम चलते हैं वहां 18 फीट जाने के लिए। तो इसमें 3 कैंप थे, कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 था उस फीचर के बेस पे। और ये जो चढ़ाई थी ये रिज लाइन आप समझते हैं एक ऐसे पहाड़ की जो एक लाइन होती है उस रिज लाइन के बेस के साथ साथ हमने चढ़ाई चढ़नी थी, और इस रिज लाइन के ऊपर पूरी पाकिस्तान ने पोस्ट अपनी पकड़ी हुई थी। तो हम रात को चलते थे और कैंप 2 के बाद तो ये हालत थी क्योंकि चारों तरफ बर्फ है तो आपको अगर पानी भी पीना है चलते हैं तो प्यास लगती है, पानी भी पीना है तो आपने स्टोर निकालना है, बर्फ को गर्म करना पतीले में फिर पानी बनेगा फिर आप उसको पी सकते हैं। तो अगर आप पानी बना भी लिया तो तकरीबन वो आध घंटे में फिर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो हर जगह जब भी प्यास लगी ये हमको ड्रिल करनी पड़ती थी, और बहुत माइनस में टेम्परेचर था तो आपके हाथ भी ऐसे फ्रीज फ्रीज होते थे, मतलब आप जैसे आप 5 मिनट का ब्रेक किया जब आप वो गर्म कर रहे हैं बर्फ को उतनी देर खड़े होने में भी पूरी बॉडी फ्रीज करने लगती थी क्योंकि ऐसे अलग से कोई हमारे को स्पेशल माउंटेन इक्विपमेंट नहीं था। तो हम इस प्रकार चलते चलते तीसरे दिन हम उस बेस में पहुंच जाते हैं जो हमने चोटी को कब्जा करना था, और जब वहां पहुंचते हैं तो दिन में हम तो रात को चलते थे तो रात को वहां पहुंचे तो दिन में आसपास जो पाकिस्तान की पोस्ट थी वहां से हमारे ऊपर काफी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिन में पूरा चारों तरफ बर्फ है और बर्फ में तो 8-10 किलोमीटर तक भी कोई अगर ऐसे बैठा हो साफ नजर आएगा वो। लेकिन जो पाकिस्तान की पोस्ट थी वो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी, तो पाकिस्तान के जो LMG राइफल ये फायर हमारे ऊपर कारगर नहीं था। तो उस दिन जब हम पहुंचे, ये 6 जून की बात है, तो शाम को तकरीबन 5 बजे स्मॉल आर्म्स फायर हुआ, फिर शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास दुश्मन का आर्टिलरी का फायर स्टार्ट हो गया। आर्टिलरी का फायर आप सब समझते हैं, गोला जो गिरता है, और हमारे ऊपर गोले चारों आगे पीछे गिरने लगे। गोला जब गिरता है तो उसके वो स्प्रिंटर्स निकलते हैं, जिसमें आप तक 200 मीटर के इलाके में कोई भी इंसान है तो वो स्प्रिंटर से खत्म हो जाओ, किलिंग एरिया इसको बोलते हैं। तो ये कार्रवाई स्टार्ट हुई, हमारी पूरी टीम वो एकदम एक प्रकार से काफी ये लगा लिए कि काफी एक सदमे में आ गई, क्योंकि एक गोला नजदीक गिरते ही पूरी टीम का खात्मा था। कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई ऐसी कोई है ही नहीं जगह जिसके आप आड़ ले सको, जिसमें छुप सको। लेकिन गनीमत यह रही कि शाम को 5 बजे के आसपास ये फायरिंग स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन फिर 6:30 बजे तक लास्ट लाइट होकर अंधेरा हो गया, और अंधेरा होने के बाद वो फायरिंग रुक गया। हम जब चले थे 40 kg का वो सामान लेकर, तो हमारे पास राशन उसमें ना के बराबर था, क्योंकि हमारा एम ये था कि बार पहुंच के जो हैवी सामान है, हमारा टेंटेज है, केरोसिन है, एमिनेशन है, वो छोड़ के फिर एक पार्टी आएगी खाली हाथ और वो राशन लेके जाएगी। तो रात को सबके अंदर काफी डर था कि ये तो आज तो हम बच गए हैं, कल जैसे सुबह होगी। तो पहले दिन तो वो फायरिंग 5 बजे स्टार्ट होती आरटी की, लेकिन ये था सबको कि अगले दिन तो ये सुबह होते ही स्टार्ट हो जाएगी, तो सबके अंदर वो एक प्रकार भय था। तो वो लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहा था उस भय को, हर बंदा ऊपर से मजबूत रहने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने 7 बजे के आसपास वो लिंक जो आना था नीचे राशन लेने के लिए, वो लिंक हमने भेजा, लेकिन तब तक जितने भी पाकिस्तान की पोस्ट थी ओरिज लाइन पर वो सारी अलर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही हमारी लिंक पार्टी नीचे आ रही थी इसके ऊपर फायरिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो एक पोस्ट से निकले, फायरिंग हुआ, ऐसे बचते बचाते क्रॉलिंग करते हुए फिर आगे बढ़े, दूसरी पोस्ट से फायरिंग हुआ, फिर इस जो टीम थी नीचे जा रही थी 7-8 जवानों की, कमांडोज की, इनको लगा कि नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दुश्मन अलर्ट है और ये तो बहुत एक जोखिम भरा और काम है, शायद हम नीचे जिंदा पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो तीसरी पोस्ट से वो वापस ही आ गए तकरीबन 8:30-9 बजे, और उन्होंने बताया कि राशन का लिंक करना संभव नहीं है, और उन्होंने ये भी फिर अंदाजा लगा कि ये तो यहां पर एक दिन भी रहना साक्षात्कार मौत को बुलावा देना है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और अगले दिन तक रुके तो सुबह उठते ही आरटी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और 3 दिन से वैसे भी किसी ने खाया था नहीं, चलते थे बस पानी वानी पीते थे, और काफी पूरी टीम फिजिकल तौर पर बहुत थकी हुई थी, और ये सिचुएशन देखकर मानसिक तौर पर भी काफी प्रेशर था। तो वो सब मेरे पास है और बोले, सर देखो आप ये जो हालात है, आज हम बच गए आरटी फायर से, कल फिर आरटी फायर होगा, राशन का लिंक हो नहीं रहा है, पूरे दुश्मन अलर्ट रास्ते में, एक ही रास्ता है हम यहां से जैसे भी जान बचा के पहुंचे, शायद सभी नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में फायरिंग होगी तो कुछ कैजुअल्टी होंगी, लेकिन कुछ तो नीचे पहुंच पाएंगे, यहां रुके थे पूरी टीम की मौत निश्चित है। जब उन्होंने ये उनका ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक था, तो मैं इस टाइम पर ये मेरे को ज्ञान मिल चुका था, और मैं पूरा जब हम बेस से चले थे पूरा एक मेडिटेशन के मैं स्टेट में था, और जो आप इस राजयोग का मेडिटेशन को आगे जीवन में पालन करेंगे तो आपको भी ये पक्का अनुभव होगा कि हम एक आत्मा है, और जो आपको बताएगा कि परम पिता परमात्मा एक लाइट का स्वरूप है, परम धाम में है, वो वाक्य में आपको अनुभव होगा कुछ दिन के मेडिटेशन के बाद, और वो जब अनुभव होता है तो आप बहुत एम्पावर हो जाते हो, मतलब आपका एक फिजिकल बॉडी का भी सेंस आपको दूर हट जाता है, और आप सुप्रीम सोल से ऐसे कनेक्ट हो जाते हो, और एक बहुत ही ऊंची आपकी स्थिति बन जाती है। तो पूरा 3 दिन जब ऊपर चढ़ते रहे थे मैं लगातार उस मेडिटेशन वाली स्थिति में था, और जैसे आप सब समझते हैं जितनी भी आप विपत्ति में होते हैं उतना ही भगवान को याद ज्यादा करते हैं, और ये तो बहुत बहुत जबरदस्त विपत्ति थी। तो मैं लगातार मैं उस मेडिटेशन में था कंटिन्यूस, और इसमें फिर ये भी ज्ञान था, मैं गीता विता उसके पहले पढ़ता था, तो कि भाई जो मौत और जन्म वो हरे का क्या है निश्चित, उसको कोई एक सेकंड भी आगे पीछे कर नहीं सकता है। तो मेरे को ये भी यकीन था कि ये अगर जहां जितने दिन उतने दिन यहां पर रहना है, तो मैं और ऊपर से मेडिटेशन में थे तो एक बड़ी अच्छी अच्छी अवस्था थी जब आप सोल और सुप्रीम सोल का कनेक्शन होता है, तो मैंने उनको कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगा और आप लोग जो करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहूंगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब मैंने ये डिसीजन लिया एज ए टीम लीडर, तो उनका काफी, मैं देखा उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे छोटे हो गए थे, ये कह के मैं अपने टेंट में आ जाता हूँ, वो पार्टी अपने अपने टेंट में चली जाती है। इसके बाद हमारा कोई वार्तालाप नहीं हुआ, मेरे को कोई एहसास नहीं था कि क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मैं एक अपने खुद के ख्यालों में फिर उसके बाद एक चल पड़ा कि कल जो है इस जीवन की समाप्ति निश्चित है। और उस टाइम काफी कैजुअलिटी हो ही रही थी, कारगिल वॉर में हर रोज हमारी 25-30 कैजुअलिटी हो रही थी। और फिर मेरे को लगा कि अगर मेरी फैमिली को ये पता चले कि मेरे लास्ट थॉट्स क्या थे और क्या मैं किस मानसिक स्थिति में था, और उन सबके लिए मैं एक मैसेज लिख पाऊं तो शायद एक बड़ा अच्छा एक क्लोजर उनको मिलेगा, यू नो, एक लास्ट, जैसे उनसे वार्तालाप ही होगा उनको ऐसे फीलिंग आएगी। तो मैंने एक लास्ट लेटर लिख दिया फैमिली के लिए, बच्चों, मेरे छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, एक बेटी 2.5 साल की थी, बेटा 5 साल का था, और बच्चों के लिए मैसेज लिखा, वाइफ के लिए मैसेज लिखा, पेरेंट्स के लिए लिखा, और वो लेटर मैंने पॉकेट में डाल के और मैं अपना योग में बैठ गया। और सिर्फ यही था कि कब हम जो ये सुबह अभी तो योग कर रहे हैं और कब ये लाइट एक्चुअल में जाके वहां मिल जाएगी। जब मैं इस स्थिति में था तो वो जो दूसरी जो पार्टी थी वो असमंजस में थे, उन्होंने रियलाइज किया कि वो मेरे को छोड़ के तो नहीं जा सकते, मतलब एक रूल होता है जैसे आर्म फोर्सेस का, आपको पता होगा, कमांडर छोड़ो किसी भी आपके टीम मेंबर की, आप बॉडी साथ लेके जाओगे या उसको इंजर्ड हो तो साथ लेके जाओगे, आप किसी को भी छोड़ के आते नहीं हो, बॉडी भी छोड़ के आते नहीं हो। तो उनको भी ये लगा कि इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, और वो भी एक प्रकार से जब इंसान बहुत प्रेशर में होता है तो आपके अंदर इतनी, हमारे अंदर बहुत बहुत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान होती है, जो जब हम क्राइसिस में होते हैं तब निकल कर आती है, वो नहीं तो ऐसे छुपी रहती, वो डोरमेंट रहती है। वो उनके अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ और उन्होंने सोचा कि एक ही तरीका है, अभी हम रात को इस पोस्ट पर चढ़ने की कोशिश करें, भले ही भूखे हैं 2 दिन से, भले ही थकान है मेंटली फिजिकली, लेकिन एक ही रास्ता है अभी बचने का, हम रात को ये ट्राई करें। तो जेसीओ ने जो 4-5 बेस्ट कमांडोज थे उनको टास्क किया, वो रोप फिक्सिंग करते हुए उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, पोस्ट सेटअप कर देते हैं, और सुबह मेरे को फिर 5:30-6 के आसपास वो जेसीओ आता है, ऐसे वी साइन दिखाता है, बोलने की भी एनर्जी बची नहीं थी, और फिर बोला कि सर हम पार्टी भेजी थी, रॉ फिक्सिंग होगी और पोस्ट तक हम चढ़ के आ गए हैं। तो ये बड़ी मेरे को बड़ा खुशी हुई सुन के। फिर उसके बाद उन रोप का हम इस्तेमाल करते हुए और पूरी की पूरी टीम ऊपर पहुंचती है, और ये फर्स्ट सक्सेस जो इंडियन आर्मी की तुरतुक में हमको मिलती है। यहां पर भी काफी दुश्मन का फायर आया, जो आसपास की पोस्ट दुश्मन के पास थी, लेकिन वो फायर भी कारगर नहीं था, और ये जो थी सक्सेस, ये इंडियन आर्मी की पहली सक्सेस थी। फिर जब नीचे खबर भेजी तो सबको एक बड़े बहुत बधाई संदेश आया, आर्मी चीफ से बधाई संदेश आया, मेरे को अवार्ड मिला, टीम के काफी मेंबर्स को अवार्ड मिला। उसके बाद फिर ये स्पेशल टीम हमारी बन गई, और कारगिल बटालिक जुबार काफी जगह हमने और ऑपरेशन किए, वो आपके साथ फिर कभी शेयर करेंगे। लेकिन ये राजयोग का ये बेनिफिट हुआ, अगर मैंने सिर्फ वो जितने भी थे वो मेरे से फिजिकली सारे टफ थे, मैं एक माउंटेनियर्स नहीं हूँ, वो सारे बेस्ट माउंटेनियर्स थे, हर चीज में मेरे से ज्यादा स्किल्ड थे वो, और वो रॉ फिक्सिंग भी उन्होंने की, आगे चिड़े भी वो रास्ते में, पिट्ठू भी मेरे रास्ते में आधे रास्ते हुई लेके चल रहे थे, लेकिन मेरा सिर्फ एक डिसीजन अपने जीवन को ताक पर रखने का कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, उस एक डिसीजन ने पूरे तुर्तुक की लड़ाई को तब्दील कर दिया। तो ये मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं।
बहुत ही सुंदर अनुभव। तो आपने सुना कि कैसे हम ऐसी टफ सिचुएशन में भी अगर परमात्मा को नहीं भूलते तो जरूर वो भी हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छा भाई साहब। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल विकास भाई से। भाई साहब, आपने 25 इयर्स के आसपास अपना कार्यकाल आर्मी में दिया है, और आर्मी की लाइफ हम सबको मालूम है कि कितनी टफ होती है और बिजी लाइफ है, लेकिन आपको ऐसे कैसे लगा कि आर्मी की लाइफ में रहते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान को मुझे अपनाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस इंस्टीट्यूशन का आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय कैसे मिला, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको ऐसे क्यों इस बात से लगा कि आध्यात्मिक ज्ञान को मुझे अपनी आर्मी लाइफ में रहते हुए अपनाना चाहिए, आपको कैसे विश्वास हुआ, तो आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताएं।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हम सभी फौजी भाइयों के लिए। देखिए, हम सभी ने, मैंने जो मेरा पर्सनल अनुभव है, आप सबका भी तकरीबन वैसे ही रहा होगा। हम सब जब इस दुनिया में आते हैं, एक बच्चे के रूप में आते हैं, जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप का सब्र होता है, बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से पालते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे तो नटखट होते हैं, गलती करते हैं, तो हम लोग एक चीज हमें सबसे पहले सहन करना पड़ता है, वो है डर, अपने माँ बाप का क्रोध। तो ये बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद स्कूल में पहुंचते हैं टीचर्स का, फिर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, तो फिर तो आपको पता ही, आप सबने ट्रेनिंग की हुई है, तो किस तरह से हमारा रहता है। तो मैं भी उसी तरह से पला बड़ा हूं। और उसके बाद खास एक चीज थी जो विशेष थी कि मेरा फौजी परिवार है, फादर भी, दादाजी भी, बड़े भाई भी आर्मी में है। माताजी की साइड से मेरे पिछले 6 जनरेशन के सभी गोरखा रेजिमेंट के ही थे, 2nd 1st गोरखास के। तो सबका मतलब आप समझ सकते हैं, दिमाग गर्म, आवाज कड़क, खान पान पूरी तरह से आप जानते जो फौजी भाइयों का होता है, खान और पान दोनों ही थी। तो वैसा था, बचपन से वैसे ही देखा था। तो ट्रेनिंग में वही सीखा, कड़क आवाज, गलती सहन नहीं करना, क्रोध को बार बार दर्शाना, प्रदर्शन करना। तो वैसे ही मेरा भी स्वभाव था, बहुत मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था। सर जैसे बहुत सौभाग्यशाली थे, सर ने कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली था कि मैं कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट एक दूसरे इंटरनल वॉर में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें हम रोज करते हैं। कारगिल वॉर जब शुरू हुआ था, हमारी पलटन वहीं पे थी, मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, तुर्तुक हमारे से थोड़ा सा आगे था, उसमें मैं उससे पहले ही, जिन्होंने उस इलाके को देखा होगा, मैं सदर्न ग्लेशियर में था, सदर्न ग्लेशियर के बाद ही तुर्तुक वाला जो सर सुना रहे थे वो वाला इलाका था, और वहां पे बहादुर पोस्टी में वहां पे तैनात था। और हम लोग बचपन से ही हर तरह का भोजन खाते थे, जैसा होश संभाला था, तो हमने भी सब कुछ खाया जिस तरह से। लेकिन मैं जब क्लाइंब करने लगा, मेरे अंदर आया एक इच्छा हुई कि मैं प्योर वेजिटेरियन बन जाऊं, क्यों किसी को मतलब ना दुख पहुंचा के अपने पेट की आग को बुझाना, जब बहुत सारे ऑप्शंस इतने अच्छे अच्छे हैं, और आप सबको मालूम है ग्लेशियर्स में हर तरह के फूड अवेलेबल रहता है। तो मैंने ये डिसीजन बताया अपने पलटन में कि भाई मैं आज से प्योर वेजिटेरियन बन गया हूं, और मैं जिस पोस्ट में गया उसका नाम बहादुर पोस्ट था, और मेरे साथ 1 JCO और 10 जवान थे, और सारे सरदार थे। और आपको मालूम है हम लोग को ऊपर से जो खाना ड्रॉप होता है वो सारा वेजिटेरियन भी होता है, लेकिन ज्यादातर नॉन वेज फूड होता है, और मैं अब तक सब कुछ खाता था, और मैंने डिक्लेयर कर दिया था मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया हूं। तो ठीक है, हमारे पोस्ट पे रोज कभी चिकन गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है हेलीकॉप्टर से, और मैं पोस्ट कमांडर था, तो मेरे पैर के आगे थोड़ी सी जगह थी कि भाई हमें थोड़े स्टाइल में बैठ सकूं, लेट सकूं, बाकी तो सब भाई लोग बहुत एकदम पास पास थे, एक फाइबर ग्लास हट था, अगर आरटी फायर भी आए तो हमारे हट को तहस नहस कर सकता था। तो ऐसे समय में रोज वो मेरे शाम को मेरे बेड के सामने ही स्टोव रखते थे, उसमें मक्खन के अंदर वो बनाते थे, चिकन आया या फिश आई या जो भी आया बनाते थे, और वो मेरे सामने खाते थे, और मेरे को रोज उन्होंने 3 महीना खीर खिलाई है। खीर खाते खाते मैं वहां पे रहा हूं। और आप देखो, बोलते ना मीठे मीठी चीज खाते तो शायद बन भी, शायद है ना, मुख भी मीठा हो जाता है। और कारगिल वॉर जब शुरू हुआ, उससे पहले ही हमारी पलटन नीचे आ गई, हम मेरठ में थे, कारगिल वॉर शुरू हो गया तो मेरी पलटन मोबिलाइज होके वॉर के लिए चली गई, और मुझे मेरे हाथ में पोस्टिंग ऑर्डर मिल गया कि भाई मुझे बॉम्बे जाना है। अब आप सोचिए, लड़ाई के समय में किसी को बॉम्बे कोई भेजेगा? तो मैं तो, मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि मुझे बॉम्बे कौन भेजेगा, मुझे लगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे भी लड़ाई में जाना पड़ेगा। लेकिन पहुंच गए हम बॉम्बे, कैंसिलेशन कुछ हुआ नहीं। बॉम्बे जाते ही वहां पे मैं कंपनी कमांडर बना, अपना हमारा रूटीन काम शुरू हो गया, क्योंकि वॉर देश में लगा हुआ था और मैं एक लॉजिस्टिक्स यूनिट का ऑफिसर था, तो हम लोग अपना काम में बिजी हो गए। काफी हम लोग के पास टास्क था, क्योंकि पूरे फील्ड आर्मी की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके टायर, ट्यूब, बैटरी, क्योंकि सारे उस समय उस हालत में नहीं थे, हम लड़ाई के लिए तैयार थोड़ी थे, तो सारा कुछ सप्लाई करना, तो बहुत हम लोग बिजी रहते थे। और मैं बहुत यंग ऑफिसर था, तो यूनिट में समझो एक लास्ट मतलब जूनियर मोस्ट ऑफिसर था, तो हम लोग को जिस तरह से कार्य करना था, जरा सी भी गलती होती थी सारा मुझको सुनना पड़ता था, और मैं सीखे हुए तरीके से सुन के और उसमें एक्स अपनी तरफ से भी ऐड करके जवानों को दे देता था, अपने सभी को बांट देता था प्रसाद। लेकिन होता क्या था कि खुद भी डिस्टर्ब रहना, उनको भी डिस्टर्ब करना, तो ये रोज का, और मैं फिर घर जाता था शाम को, पूरा दिन काम करके घर गए तो घर में भी फिर क्या होता था, वाइफ और वाइफ के सामने तो आप ज्यादा ऑर्डर चला नहीं सकते हैं, आप सबको मालूम होगा, तो फिर घर में वही डिस्टर्बेंस वाली स्थिति हो जाती थी। ऐसे समय में आपको ध्यान होगा जब टाइगर हिल और तोलोलिंग वगैरह में, सर को तो पता ही है कि बहुत भीषण संघर्ष चल रहा था। अगस्त का महीना था ये, और अगस्त के महीने में मेरे यूनिट में दो बहनें आई, ऐसे जैसे दीदी बैठे आपके सामने, व्हाइट साड़ी पहना हुआ, बैज लगा हुआ, ओम शांति। मैंने पहली बार देखा था इस तरह से ना, तो जैसे आए तो मेरे को बोलती ओम शांति, मैंने बोला हाँ जी ओम शांति, क्यों आए आप लोग यहाँ? तो बोलती हम आपसे परमिशन लेने आए हैं, हम सभी फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। मैंने पहले कभी इस तरह से देखा नहीं था, मेरे को लगा ये ना आईएसआई वगैरह ना कुछ लोगों को भेजा है, और ये ना पक्का जासूस वगैरह या कुछ कुछ ना कुछ सुराग वगैरह लेने आए हैं, और मुझे ऊपर से तो पक्का गाली पड़ेगी। मैंने बोला क्यों क्यों बांधना चाहते हैं, इतने प्यार से नहीं बोला था उस समय का, वो वाला स्वरूप भूल चुका हूं मैं। मैंने बोला क्यों बांधना चाहते हैं, तो बहन ने बहुत प्यार से बोला कि हम यहां अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे ना तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। और इनके पता नहीं उनके बहनों के से ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी मतलब पवित्र वाइब्रेशन आ रही थी। मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए, मुझे ये बताइए यहां मुंबई से कारगिल 3000 किलोमीटर दूर ये दिल की दुआ कैसे जाता है? तो बहन बैठ के मुस्कुराने लगी, आप भी मुस्कुरा रहे। बोलती है विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं? अरे भगवान को फौजी हम तो बहुत याद करते हैं, और जूनियर ऑफिसर तो बहुत ही याद करता है, बहुत याद करते हैं। बोलते अच्छा विकास भाई क्या भगवान को मानते हैं? मैंने बोला हाँ मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरी माताजी से जो भी मैंने पाया है मैं बहुत भगवान पे विश्वास है, भगवान ने जीवन में मेरी बहुत मदद की है, मानता हूँ। तीसरा सवाल पूछा मैं सोच में पड़ गया। बोलते हैं विकास भाई भगवान को जानते हैं? मैंने बोला नहीं जानता तो नहीं हूँ, हाँ मानता बहुत हूँ, इतनी जानकारी नहीं है। चौथा सवाल पूछा मैं सोच में ही पड़ गया एकदम, मतलब समझो ग्राउंड लेवल पे आ गया। उन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी इंसान को आप जानते नहीं है, क्या आप याद कर सकते हैं? मैंने बोला कैसे, याद कैसे करेंगे बिना जाने? तो बोलते बचपन से लेके, ये बहन बोल रही है मुझे कि बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हो बताओ? तो मैंने ऐसे कर दिया, बहन बोला बहन जी आप ही बता दो क्या करते हैं। तो बहन बोलती आप फरियाद करते हो, और याद करना और फरियाद करने में जमीन आसमान का फर्क है। और बात मुझे समझ में आने लगी। मैंने बोला बहन जी ठीक है हम, मैं पहले अभी टाइम कम है मेरे पास, मैं आपका परमिशन लेता रुको। मैंने फोन उठाया, अपने कमांडेंट को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से दो बहनें आई हैं, वो हमारे फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहती है। उन्होंने बोला यार तू यहां डिपो मत लेके आना, हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग बहुत बिजी है, वहीं करवा ले अपना प्रोग्राम। मैंने बोला थैंक यू सर, फोन रख दिया। और फिर हमने अपने यूनिट के जितने भी हमारे फौजी भाई थे, 100-150 थे उस समय, सभी को बिठाया एक हॉल में, सबको बहनों ने राखी बांधी, और हमको बहुत बढ़िया मीठा मीठा कुछ टोली खिलाई, जिसे यहाँ टोली बोला जाता है, प्रसाद आपने भी खाया यहाँ पे। और बीच में मैंने हमारी दीदी से पूछा जो मेरे बगल में बैठी थी, आदरणीय कुंती दीदी, उन्होंने इसी साल शरीर भी छोड़ा, उन्होंने उनसे मैंने पूछा दीदी कि आप ये बताओ, आपने बड़ी बड़ी बातें बताई लेकिन हम लोग बड़े सिंपल होते हैं फौजी लोग, हमारा दिमाग बहुत सिंपल होता है, ये बताओ आप सिखाते क्या हो? दीदी ने बोला कि हम राजयोग सिखाते हैं, आपको सीखना है तो हमारे सेंटर में आओ। राजयोग मैंने 24 साल पहले जब शब्द सुना मेरे को लगा ये योगा सिखाते होंगे, और मैं बहुत फिटनेस फ्रीक था, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को फिटनेस के ऊपर शौक था, मेरे को लगा ये रामदेव बाबा की तरह फूंकना उंकना सिखाती होंगी, और मेरे को शौक था कि सीखना। उसी दिन शाम को बाकायदा ट्रैक सूट पहन के मैं सेंटर पहुंच गया, और वहां गया तो देखा तो बहन जी तो एकदम यंग सी बहन व्हाइट साड़ी पहन के बैठी हुई है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा उस दिन मुझे एक वरदान मिला, बहन सामने बैठी हुई बोलती है मुझे कि विकास भाई भगवान कहते हैं हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए, प्रश्नचित नहीं रहना चाहिए। टाइम लगा मुझे ये जो क्रोध का जो आवेश था जो आवरण था वो खत्म होने में, लेकिन वो एक वरदान था मेरे लिए। मैंने बोला बहन जी मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा, आप ये बताओ आप मुझे क्या सिखाओगे? बोलती है यहां 7 दिन का कोर्स करना है, 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा कोर्स है तो फीस क्या है? तो बोलती है समय, आप समय दे रहे हैं, टाइम इज मनी, तो आप बस थोड़ा समय दीजिए आप सीख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। और मैंने अपनी वाइफ से पूछा था निकलने से पहले घर से कि भाई मैं जा रहा हूँ राजयोगा सीखने, आपको चलना है? बोलती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सुना बहन से पहले दिन का, मैंने बोला आज ही से शुरू करो कोर्स। उसी दिन शाम को मेरा कोर्स शुरू हो गया, बहन ने मेरे को 7 दिन का पहला चैप्टर सुनाया जो आप सुन चुके हैं, स्वयं का परिचय। अब जब स्वयं का परिचय मिल गया तो मेरे को सब पुराना भूल गया, कोई सवाल नहीं आया, और आज तक अभी 24 साल हो गए मेरे को आज भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये डायरेक्ट परमात्मा का है जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं, कोई डाउट की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। एक्चुअली डाउट उसी को आता है जो थोड़ा अपना पुराना ज्ञान साथ में लगाने की कोशिश करता है, मैच करने की, कि भाई मैं तो ये जानता हूं अब आगे क्या है। मैंने तो वो सब छोड़ दिया, मेरे को लगा कि हाँ यही तो सत्य ज्ञान है, और क्या जानना है बाकी, कि मेरा सत्य परिचय क्या है, मेरे पिता का परिचय क्या है। और मैंने रोज जो सुनता था बहन का, अपने वाइफ को सुनाता था, और 7 दिन बाद बोलती है विकास मुझे भी ये कोर्स करना है। फिर उनको रोज स्कूटर में बिठा के ले जाता था, उन्होंने भी कोर्स किया, आज वो यहाँ डाइनिंग हॉल में भोजन परोस रही है, सेवा कर रही है। तो ऐसे हम पूरे परिवार के साथ इस यात्रा में हैं, और वंडरफुल बात यह है कि हम जहां पर हैं, यहां पर एक्चुअली हम अपने आप से नहीं आए, आप सबको भी आप ये अनुभव करना शुरू करेंगे, आपको बुलाया गया है, आपको लाया गया है। इस कोर्स में जितने डिटेलमेंट थे ना, मैं वहां पे बैठ के ऑफिस में ये सोचता था इतने सारे आ गए ना, मैं कहां रखूंगा इतने लोगों को। लेकिन मैंने, मेरी जो टीम ऑफ ऑफिसर्स थी, हम लोग यहां जो डिटेल रूम्स अलॉट कर रहे थे, मेरे को मालूम था ये बुलाने वाला मैं नहीं हूं, ये काम है भगवान का, और वो उतनों को ही भेजेगा जितने आने के लायक हैं। आप इस हॉल में जितने बैठे ना, आप सब ये डिजर्व करते हैं, आप सभी विशेष हैं, एक एक आप सब, आज आप नहीं समझ पाए शायद, लेकिन आप आने वाले में समय में समझेंगे कि आप एक एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान का प्यारा बच्चा है, वो यहां आया है, और उसको वो देना चाहता है भगवान, जो आप जिसकी आज तक आपने तमन्ना की है, जिसके लिए बहुत आपने प्रार्थना की है, बहुत शिद्दत से, इस जन्म का तो याद है, पिछले जन्मों में बहुत आपने तपस्या की होगी, आप सभी बहुत ज्यादा पुरानी योगी तपस्वी आत्माएं हैं, और आप यहां आए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, आपका एक नया जीवन, बस यहां पे बस ग्रहण अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अलर्ट रह के सुनिए, क्योंकि अब समय एक्चुअली वो है कि हम सब अलर्ट हो जाएं और थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, उसके बाद आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू, ओम शांति।
थैंक यू विकास भाई, बहुत ही सुंदर अनुभव, जैसे भाई साहब ने अपने अनुभव में सुनाया कि कितना गुस्सा क्रोध भाई साहब के जीवन में था, लेकिन अब राजयोगा से भाई साहब एक चीयरफुल चेहरा हमें नजर आता है, और आप सबका वेलकम भी इस चीयरफुल चेहरे ने रिसेप्शन पे किया, तो जोरदार तालियों से हम भाई साहब को बहुत बहुत इस वरदान के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। संजीव भाई जी, विशेष आप दिल्ली पुलिस से हैं, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम सबके माइंड में एक इमेज जो दिल्ली पुलिस का बना हुआ है, विशेष दिल्ली पुलिस ना कहें तो सभी पुलिस पर्सनल्स का बना हुआ है, कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि कई बार पब्लिक डीलिंग के टाइम पर देखा गया है कितना गुस्सा कितना स्ट्रेस रहता है। तो आप विशेष दिल्ली पुलिस से हैं और आप राजयोगा का अभ्यास भी करते हैं, तो विशेष स्ट्रेस फ्री लाइफ हम कैसे राजयोगा के अभ्यास से लीड कर सकते हैं, और क्या आप स्टार्टिंग से ऐसे ही चीयरफुल थे, क्योंकि आज आप हैप्पी लाइफ के विषय में भी बहुत अच्छा सेशन कराते हैं, तो आपके लाइफ का कोई ऐसा अनुभव कि आपने इस स्ट्रेसफुल लाइफ से निकल के अपने को चीयरफुल कैसे बनाया, और कैसे इस राजयोगा मेडिटेशन ने आपको बेनिफिट दिया?
ये क्वेश्चन सुन के थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस पहले था ऐसा लोग बताते हैं मुझे, क्योंकि जिसे स्ट्रेस होता ना उसे पता नहीं लगता। मेरे कारण बहुतों को स्ट्रेस था, मेरे कारण औरों को बहुत, फैमिली में, दोस्त में, आसपास सबको स्ट्रेस था। जब मैं इस संस्था के संपर्क में आया तो वो अनुभव तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक साबुन है, बहनों का प्यार, एक पानी है, साबुन और पानी में हम हमारे को धोया जाए और दाग ना मिटे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सर्फ एक्सेल है, ये स्पिरिचुअलिटी में एक्सेल कर रही है, तो हम धुल गए। हम जिसे स्टाइल समझते थे, गुस्सा, एंगर, ईगो, यहां आके पता लगा वो स्टेन है, दाग है। तो जब दाग है तो उसे हटा दिया। बाकी रही स्ट्रेस की, फोर्स उतना स्ट्रेस नहीं देती, पुलिस उतना स्ट्रेस नहीं देती जितना पुलिस अपने आप में स्ट्रेस नहीं दे रही, जितना पुलिस में रहने वाले लोग स्ट्रेस्ड हैं तो वो स्ट्रेस दे रहे हैं। मैंने यहां आके सीखा, अगर एक दुखी व्यक्ति है वो ही दुख दे सकता है, सुखी व्यक्ति किसी को भी दुख दे ही नहीं सकता था। तो जब जब मुझे कोई स्ट्रेस देता दिखा सीनियर वीनियर, तो मुझे उसमें गुस्सा नहीं तरस आता था। मैं ऐसे बोलता था, बेचारा है ही इसके पास दुख, तो ये मुझे क्या देगा दुख। मैं यहीं से कहता था, नॉट एक्सेप्टेड, अपने पास रख, घर ले जाके इसी को सो, हम खुश रहते थे। स्ट्रेस जब फोर्स में आया इसमें, तो लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग कर ली है, तो पहले तो ट्रेनिंग ही ऐसा था, लेकिन ट्रेनिंग में जब तू पुलिस स्टेशन में जाएगा तब तेरे को पता लगेगा ईमानदारी क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। लेकिन आप में से कुछ स्टेट पुलिस में आए होंगे, स्टेट पुलिस से जो आए एक बार हाथ खड़ा करें तो मेरे को पता लग जाए, स्टेट पुलिस से मतलब दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सब पुलिस, पुलिस से, अच्छा पुलिस से काफी। मेरी इमेज पुलिस में ट्रेनिंग के बाद ही जाते ही ऐसी बनी, मेरे थाने का SHO मेरे लिए पंखा लगवाता था, क्योंकि मैं पंखे के बिना काम करता था, और वो मुझे लगाते हुए कहता था, ये दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि SHO सब इंस्पेक्टर के लिए पंखा लगा रहा है, नहीं तो सब इंस्पेक्टर SHO के लिए लगाते। वो ये कहता था, कोई भी थाना नहीं छोड़ेगा सिवाय संजीव के, ये घर जाएगा, खाना खाएगा, आएगा, इसका थाने में रहना ही काफी है। एक ऐसी इमेज बन गई थी, यहां आके मैंने सीखा, फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योर इमेज, देन इमेज विल प्रोटेक्ट यू। इमेज मीन व्हाट आई एम फ्रॉम एजेस, मैं आई एम एज, जो मैं काफी समय से हूं वही मेरी इमेज है, और वेयर एवर वी गो आवर इमेज रीच बिफोर अस। जैसे ही हमारा ट्रांसफर होता है तो लोग पहले से ही पूछ लेते हैं, नहीं कि साहब आ रहे हैं कैसे हैं, गरम दल के नेता है, नरम दल के नेता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ऐसे इमेज ट्रेवल करती है। तो हर जगह इमेज बचाती गई, हमारी इमेज देख के लोग ऐसा कोई काम भी नहीं कहते थे स्ट्रेस का, जैसे कोई हाथी है तो हाथी से तो हाथी वाला ही काम होगा ना, और डॉग से वाला काम होगा। जब उन्हें पता लग गए हम गजराज हैं, तो लोगों ने हमारे आगे नमन करना शुरू करा कि वैसा प्यार से रहिए, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मिलता था। और मैंने भी नोट किया कि जब ऊपर से प्रसाद मिलता था तो वो प्रसाद में कभी भी नीचे नहीं बांटता था, जैसे विकास भाई ने बताया पहले बांटा जाता था, वो बड़ा ध्यान रखता था। एक बार मेरे नाम से कोई पैसे लेकर आ गया और वो स्पेशल पुलिस स्टेशन में कहने आया कि देन आई वाज सब इंस्पेक्टर कि उन्होंने पैसे लिए, तो SHO लिटरली स्लैप्ड हिम। नाम पूछा, किसने लिए, कि संजीव ने, क्या फिर संजीव ने मेरी तरफ दिखाया कि ये है, कि रहा मतलब अक्सर आप देखेंगे जैसे ही नाम लिया पूरा डिपार्टमेंट तैयार हो जाता है पुलिंदा बांधने के लिए, नहीं होता चाहे कहीं भी हो बिजाय सफाई के, उसने उसको बोला इधर आओ, जानता है इसको, ये पानी नहीं पीता किसी का, और तेरे से पैसे ले आया। बाद में पता लगा मेरे को कोई मोटरसाइकिल पे बिठा के कहीं दूर खड़ा करके अंदर गया और जो भी करके आया वो अलग बात है, मतलब मेरी इमेज ने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट करा। आप बस अपनी इमेज को बचाइए, ऊपर वाला आपको हर जगह बचाता रहेगा। फौजी हैं उनको गोलियों से बचाएगा, पुलिस वालों को गालियों से बचाएगा, बचाता ही रहेगा, वो बचाता ही रहेगा। तो स्ट्रेस तब आएगा जब हम अंदर से खाली हैं। खाली कढ़ाई अगर गैस पे रख दी जाए और चलती रहे तो वो कढ़ाई में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाए, कुछ ओट डाल दिया जाए और हिलाता जाए तो उसकी बड़ी सारी सुगंध आती है। तो जहां जहां भी स्ट्रेस के मौके आए, मुझे बताया गया बहनों ने, या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे, तो ये तो मेरे साथ वाले रहने वाले बताएंगे, चांस ऐसा है मेरे साथी भी आए हुए हैं, ये उनके साथ कई बार काम करने का मौका मिला, फीडबैक तो मैं यहां बैठ के जो मर्जी कह दूं, लेकिन फीडबैक तो वो देंगे ना कि भाई मेरा नेचर, मेरा व्यवहार मेरे जूनियर के साथ, मेरे साथियों के साथ और मेरे सीनियर के साथ भी कैसा रहा, फियरलेस रहा, फेयर रहा। तो अगर जो आए हैं वो अगर ऐसा है तो यस बता दें, नहीं तो कह दें झूठ बोल रहा है। बताएं जी, हैं हैं, बिल्कुल यस, वो चार पांच हैं वो बता रहे हैं यस। ऐसा नहीं कि हम इधर एक हैं उधर दूसरे हैं, नहीं, हर जगह एक जैसे, क्योंकि अगर आप अंदर बाहर एक है तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आर्टिफिशियलिटी नहीं रहेगी, तो ये बड़ा सुख रहा। ओम शांति।
वाकई में ये आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हमारे व्यक्तित्व को निखारता है उसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल संजीव भाई जी ने दिया। मेरा अगला क्वेश्चन ब्रिगेडियर हरबीर भाई से है। भाई साहब, आपने अपने टेन्योर में बहुत बार यूनिट्स को कमांड किया है और आप वहाँ कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं, तो यूनिट्स को कमांड करते हुए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में या उनके सुधार कार्य में कभी आध्यात्मिक ज्ञान ने आपको मदद की हो या विशेष इंस्पिरेशन आपको मिली हो कि आध्यात्मिक ज्ञान को यूज करके कैसे इनके सुधार कार्य में मैं अपना दे सकता हूँ हेल्प, तो उसका कोई आपके पास अनुभव हो?
थैंक यू बहन जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैसे संजीव भाई ने बताया कि जब आप एक रास्ते पे चलते हो तो आपकी इमेज बन जाती है, दैट इमेज बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और मैं जयपुर में पोस्टेड था और वहां मेरे को एक साल ही पोस्टिंग जाया हुआ था जयपुर में, आधा टेन्योर मेरा बाकी था। इस दौरान एक कश्मीर में यूनिट थी जो कि लोकल कश्मीरी को मिला के बनाई हुई थी, और ऐसी चार पांच यूनिट है कश्मीर में और 1000 के आसपास उसकी स्ट्रेंथ होती है, और इनको प्राइमरीली इसलिए बनाया गया है कि लोकल को कि उनके थ्रू आतंकवादियों की खबर निकल सकती है, क्योंकि एक गांव का एक भी लड़का अगर है तो उस गांव में जो भी टेररिस्ट का मूवमेंट होगा उसको अपने जान पहचान से रिश्तेदारों से खबर लग जाएगी। तो इस एम से यूनिट बनाई गई थी, लेकिन लोकल कश्मीरी को यूनिट बनाकर उससे आतंकवादियों की खबर निकलवाना, इसके लिए उस यूनिट की लीडरशिप भी बहुत अव्वल दर्जे की होनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मोटिवेट करना, उनका फौज की तरफ रुझान क्रिएट करना। और एक यूनिट थी जिसमें वो शायद आर्मी ने जो सीओ पोस्ट किया था गहराई से ध्यान नहीं दिया, और वो यूनिट का प्रोडक्टिव ना होकर काउंटर प्रोडक्टिव काम होने लग गया था। वो अगर सीओ यूनिट का तगड़ा नहीं है, यूनिट का कंट्रोल ठीक नहीं है, तो बाहर की खबर अंदर ना आके अंदर की खबर बाहर जाने शुरू हो जाएंगी कि फौज क्या कर रही है, फौज का कहां मोमेंट है। वो उस यूनिट में चल रहा था और भी काफी गलत काम चल रहे थे। तो इस दौरान क्योंकि मेरी वो इमेज थी, तो मेरे को जनरल विक्रम जो चीफ थे, आपने नाम सुना होगा, सिग्नल रेजिमेंट के थे, तो उनके सेक्रेटरीट ने, उनके एक ब्रिगेडियर आचार्य थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई आपको कश्मीर में उस यूनिट के लिए जो है इरमार्क किया, आपको वहां जाना है। तो मैंने मना कर दिया कि मेरा तो जयपुर जैसी बढ़िया सिटी में मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, एक साल ही मेरा हुआ था, सर मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक मैं टेन्योर होने के बाद भेज देना, मैं चला जाऊंगा। फिर जनरल विक्रम का खुद कॉल आया कि बेटे मैंने तेरे को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है और आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस कोई नहीं है। तो ये जब आदेश मिला चीफ से तो मैं फिर तो चॉइस को बचती ही नहीं है, तो वहां पर मैं गया, और वहां जाने से पहले मेरे को पूरी फिर खबरें आ चुकी थी कि क्या यूनिट है, उसमें क्या चल रहा है। तो मैंने कर्नल सती से, आप वाकिफ थे कर्नल सती से, मिले आपसे भी? तो कर्नल सती और हम बड़े बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं और मेरे एक प्रकार से गुरु भी हैं। तो मैंने कर्नल सती से बात किया, फिर बोला ठीक है जिस दिन आप जाओगे उसी दिन हम वहां पर एक मेडिटेशन करेंगे, राजयोगा की टीम बुलाएंगे और पूरा उसमें राजयोगा मेडिटेशन का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस यूनिट पे। तो जिस दिन मैंने यूनिट टेक ओवर करनी थी उस दिन कर्नल सती वहां पर आए, स्क्वाड लीडर अशोक गाबा जो चेयरपर्सन SSW के, नाम सुना आपने, वो आए, एक दो और बीके आए, और हमने पूरा वहां पर मेडिटेशन वगैरह डे वन पे ही किया। फिर एक बाबा का रूम वहां पर हमने बनाया, तीन चार गेस्ट रूम बनाए जहां पर मधुबन से भाई बहन आस्क हैं। तो हमने इस प्रकार से उस यूनिट का टेक ओवर एक स्पिरिचुअल तरीके से मैंने टेक ओवर यूनिट को किया, और जितने भी जवान थे उन सबको एक एक को ऐसे उठाया कि आप बहुत अच्छे हो, और हरेक को एक रिस्पेक्ट देकर, हरेक को इंडिविजुअल अटेंशन देकर, हरेक को गाइड करके आहिस्ता आहिस्ता सबको एक यूनिट का इंटीग्रल हिस्सा बनाया, और 3-4 महीने में ये यूनिट जो है अलग से दिखने स्टार्ट हो गई। इनकी इंटेलिजेंस भी अच्छी आने लगी, इंटेलिजेंस पे ऑपरेशन भी होने लगे, ये स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आने लगे, इनका हर चीज में यूनिट ऊपर 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 उठने लगी। और लगातार उस टेन्योर में हर 1-2 महीने में यहां से बीके भाई बहन जाते थे, मेडिटेशन करते थे, जवानों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे। पूरी अगर मैं स्टोरी को छोटा करके बताऊं तो 2 साल में ये यूनिट इंडियन आर्मी की बेस्ट यूनिट के तौर पर उभर के आई। और उसी इंस्टेंटली जनरल बिक्रम ही चीफ थे उस टाइम, वो जाने वाले थे, जनरल बिक्रम ने इस यूनिट आर्मी चीफ उसको अवार्ड देते हैं जो बेस्ट यूनिट आती है, दिल्ली के सारे जनरल वहां पर बैठे होते हैं, और पूरी यूनिट को इंडियन आर्मी की बेस्ट यूनिट आने के लिए आर्मी चीफ ने उसको ट्रॉफी दिया। और मैं अगर मुड़के देखता हूं तो मेरे को पक्का ये है कि ये हम तो सिर्फ मीडियम थे, काम कौन कर रहा था? प्रपिता परमात्मा। ये बहुत कन्विक्शन के साथ मैं कहता हूं, जब हम सब चीज उस पर छोड़ के चलते हैं, ये स्टेज तब आएगी जब हमको ज्ञान का बहुत गहरा कंक्रीट वो आ जाएगा, एक अनुभव कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सिर्फ उसके ऊपर ऐसे आंख बंद करके चीजें छोड़ सकते हो। जब उसके ऊपर सरेंडर कर देते हो तो वो अपने आप उस चीज को पकड़ भी लेता है, और आपको ऐसी टचिंग मिलती जाएंगी, आपको बिल्कुल सीधा रास्ता नजर आता जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल था एक यूनिट का, जो कहां थी अर्थ से, फर्श से अर्थ तक जो है 2 साल में यूनिट पहुंच गई। तो ये ज्ञान का, राजयोग का और बाबा की एक कैसे आपको मदद करता है अगर उसकी याद में चलते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण और नमूना था। थैंक यू।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर अनुभव कि कैसे जो यूनिट थी जहां भाई साहब थे, उस यूनिट को कैसे आर्मी चीफ ने अवार्ड दिया। बहुत ही सुंदर अनुभव भाई साहब। अगला क्वेश्चन मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल विकास भाई जी से है। भाई साहब, विशेष हम आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, बहुत ही सुंदर परमात्मा ने इस राजयोग के अभ्यास द्वारा निखारा है, और अभी हम बात भी कर रहे थे कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही निखार लाता है, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे वो पीसफुल लाइफ हो। तो कभी आपके इस व्यक्तित्व को देखकर किसी सीनियर ऑफिसर को ऐसा लगा हो कि उनके यूनिट तक या फिर आर्मी में और सभी जगह इस ज्ञान को जरूर पहुंचाना चाहिए, तो ऐसा कोई आपका अनुभव?
ओम शांति। अनुभव तो बहुत रहे हैं इस 24 सालों में, लेकिन जैसे अगर हम सीनियर ऑफिसर की बात करें, क्योंकि जब हम जूनियर लेवल पे होते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स का उतना हम पर नहीं आता है, ध्यान नहीं आता है, अनलेस एंटिल कोई स्पेशल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कोई ऐसा सर का जैसे एक्सपीरियंस था तो कुछ हो जाए तब सबका ध्यान होता है। मैं बहुत ही सिंपल ऑफिसर रहा हूं, जो काम मिलता था उसको अच्छे से करने की पूरी कोशिश करता था, क्योंकि राजयोग का अभ्यास करते थे तो ये भी पता चल गया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, बहुत क्लियर हो गया था कि जो असली चीज है वो है अच्छाई, साथियों की दुआएं लेना, तो बहुत आसान हो गया था काम करना उसके बाद। लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था 1995-96, 1.5 साल मेरी ट्रेनिंग जब हो रही थी, उस ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ एक बहुत ही मेरे मतलब आप कह सकते हो जो बेस्ट फ्रेंड कर्नल श्रीनिवास नायडू 23 राजपूत रेजिमेंट के थे, और उनके साथ मैं पूरी ट्रेनिंग में वो मेरे को बहुत संभालते थे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था क्योंकि हम लोग एक ही कंपनी में थे, वो मेरे को बहुत संभालता क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता था, तो मैं छोटी छोटी बात पे अपने कोर्समेट से झगड़ा, कभी सीनियर से झगड़ा, कुछ कुछ करता रहता था, और वो मुझे संभालता था कि विकास छोड़ दे यार, रेंट दे, ठंड रख, ये वो, और पूरी ट्रेनिंग उसने संभाला है मुझे, एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड होता है ना वैसे उस तरह से। और जब मैं 2011 में, तब तक मैं राजयोग में अभ्यास कर रहा था काफी समय से, तब 2011 में मैं आसाम साइड में पोस्टेड था, अचानक रात को एक दिन मेरा घर का जो आर्मी टेलीफोन है वो रिंग किया, मैंने उठाया फोन तो दूसरी तरफ से आवाज आई, किसी ने बस बोला सर आपको एक मैसेज देना था, इनपुट था हमारे इधर पे, हमारे मतलब फॉर्मेशन में एक कर्नल श्रीनिवास नायडू हैं, उन्होंने आज रात को अपने वाइफ के साथ जब भोजन कर रहे थे परिवार के साथ तो कुछ बात हो गई, अपने बेडरूम में जाके आत्महत्या कर ली। तो ये इंसिडेंट जब हुआ और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई, मैंने बोला कोई किसी ने ऐसे ही पता नहीं क्या कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी होगी, कोई गलत कंफ्यूजन होगा। लेकिन दो दिन बाद न्यूज कंफर्म हो गई कि कर्नल श्रीनिवास नायडू ने आत्महत्या कर ली अपने घर में। और जब ये हुआ तो मैं ये सोचने लग गया, थोड़ा डीप थिंकिंग किया कि मैं क्या कर सकता हूं। अब चलो जो इंसिडेंट होना है हो गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसे इसमें, क्योंकि मैं इस संस्था से जुड़ा था तो मुझे लगा बहुत कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी सोच तो बहुत अच्छी होती है, सवेरे के समय हमारे मन में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन उसके लिए उसको हम एक्शन में ही ला पाते। तो मेरे अंदर भी वो था, मैं एक्शन में नहीं ला पाया। बहुत अच्छे विचार चले कि जरूर कुछ करना चाहिए, और लेकिन मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। फिर ऑटोमेटिकली जब देखो भगवान कुछ कराना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी लाइफ में क्रिएट होती है। उसके बाद मैं कुछ समय बाद मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हुआ, और ये 2014 की बात है, और मैं पोस्टिंग पहुंचा हूं और 10 दिन के अंदर एक वहां पे एक हवलदार था, हवलदार जो कि प्रिजन में बंद था, उसके ऊपर कुछ केस चल रहा था, तो उसने अपने प्रिजन सेल में आत्महत्या करने की कोशिश की, अपने दोनों नसों को, हाथों की नसों को काटा, ब्लेड से गले को काटा, लेकिन डेथ नहीं हुई, बच गया। तो उसको उसका फिर ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में कैद था, मतलब थोड़ा सा गार्ड के साथ था, और उस पर एक तरह से इलाज भी चल रहा था, साथ साथ इंक्वायरी भी चल रही थी। तो इंक्वायरी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं ही था, तो मुझे करना पड़ा ये इंक्वायरी। तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज जिससे मैं नहीं कर पा रहा था, वो इंसिडेंट मेरे सामने आया। तो मैंने वो इंक्वायरी खत्म की थी कि एक और एक जेसीओ साहब ने अपने रूम में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, सूबेदार सनप्पन 611 ईएमई बटालियन के, वहीं हमारे कैंट अहमदाबाद कैंट में। अब ये दूसरा इंसिडेंट हुआ तो वो मेरे सीओ साहब को करना था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला विकास तूने अभी तो एक इंक्वायरी की, तू कर, मैं साइन कर दूंगा। तो वो इंक्वायरी मैंने की। अब जब दो इंक्वायरी हो गई, मेरे से थोड़ा सा ये इस तरह के इंसिडेंट जीवन में बार बार क्यों आ रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला सर मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं, और मेडिटेशन में हमने बहुत सीखा है कि बहुत ठंडे दिमाग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। संघर्ष आएगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम इतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, है कोई जो हमारे सारे बोझ ले सकता है। तो मैं ये सर सभी से ये अपने कोर कमांडर से मिलना चाहता हूं, जो कि उस समय एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, जनरल बॉबी मैथ्यूज। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे मिलके कुछ हम प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया अपने यूनिट्स में, हमारे सारे फॉर्मेशन में। अब कोर कमांडर साहब वो लेफ्टिनेंट जनरल और मैं एक यंग लेफ्टिनेंट कर्नल, तो मैंने बोला ये, मैंने अपने सीओ को बोला कि सर मैं चाहता हूं आप मेरा इंटरव्यू उनसे करवाएं, आई जस्ट मेरे को बस 10 मिनट चाहिए उनके साथ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है विकास मैं कराऊंगा, ओके। अब मेरे को ये नहीं पता था वो ऊपर से ही बोल रहे हैं, कौन जाके कोर कमांडर को इन सब बातों में बोलेगा और उन्हें मनाएगा। तो उन्होंने बात इसके बारे में किया नहीं ऊपर कुछ, लेकिन मेरे को था कि अब मेरे को करना ही है। और ये जो समय है, समय भी बड़ा वंडरफुल है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही है इस समय में जो कि हमें बहुत मदद करती हैं। तो फिर मेरे को सैटरडे हो गया, तब तक कोई सीओ साहब से मेरे को परमिशन नहीं मिली कि भाई आप कोर कमांडर से मिल सकते हैं। तो मैं सैटरडे को सर के पास गया, सर मेरे को 2 दिन छुट्टी दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, यहां अहमदाबाद से जोधपुर पास ही है, मैं खुद ही कोर कमांडर से मिल लेता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को छुट्टी जाना तो ठीक है, ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है अगले हफ्ते आप छुट्टी चले जाना। तो अगले हफ्ते जब मेरे को छुट्टी जाना था, उससे पहले सीओ साहब का इंटरव्यू होता है, तो एक फॉर्मल तरीके से मैं पहुंच गया, सर का मैं 2IC था। मैंने बोला सर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं 2 दिन के लिए, तो आपसे बस परमिशन लेने, फॉर्मल परमिशन जो होता है आप जानते हैं। तो उसने बोला ठीक है विकास छुट्टी तो जा सकते हो, लेकिन आपके लिए 2 न्यूज हैं। एक तो ये है कि मैं आपके लिए कोशिश किया लेकिन आपका इंटरव्यू नहीं ला सका, खैर अब तो आप छुट्टी जा रहे हो तो आप खुद ही मिल लेना, एक खुशखबरी है आपके लिए। मैंने बोला सर बताइए सर। तो बोलते हैं कि खुशखबरी ये है कि जनरल बॉबी मैथ्यूज खुद अहमदाबाद आ रहे हैं, और उनको आपका मैं मतलब आपको मैंने डिटेल कर दिया उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए, तो आप उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर हो, तेरे को जो बात करनी उनसे कर लेना। फिर वो बोलते अच्छा आप तो छुट्टी नहीं जाएगा ना। मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हो, छुट्टी क्यों नहीं जाऊंगा छुट्टी तो जाऊंगा, लेकिन अब मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, अब मैं माउंट आबू जाऊंगा, और जाके जिसने छुट्टी मेरे को ये मौका दिया है उसको मैं धन्यवाद करके आऊंगा। तो मैं यहां आया, 2 दिन मैं परिवार के साथ यहां आया, अपने छुट्टी बिताई यहां पे, हम बाबा के कमरे में गए, परमात्मा शिव को हम बाबा कहते प्यार से, मैंने उनका थैंक्स किया, और 2 दिन छुट्टी बहुत अच्छे से मैंने यहां परिवार के साथ मनाई। वापस मैं गया तो थोड़े दिन बाद जनरल मैथ्यूज आए हमारी यूनिट, मतलब हमारे फॉर्मेशन में, मैं उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर था, और जब पूरे दिन बहुत बिजी रहे, 3:30 बजे उन्हें हमने रिसीव किया था, शाम को जब वो अपने रूम से थोड़ा रेस्ट करके बाहर निकले तो लॉन में हम लोग वो चाय पी रहे थे। मैंने बोला सर मेरे को 5 मिनट चाहिए आपसे बात करनी है, तो उन्होंने बोला हाँ बैठ यार तू चाय पी, 10 मिनट बता क्या करना है। तो मैंने उनको सारी बातें सुनाई जो आपको सुनाई इस तरह से, और वो बोलते हैं यार मेरे को एक बस मेरे को एक लेटर बना के देते, व्हाट डू यू वांट। तो मैंने उसी समय जाके यूनिट में एक लेटर खुद टाइप किया और लाके उनको दिया। उन्होंने मेरे को फिर 2 दिन बाद उनके कर्नल ए का लेटर आया, मेरे को पूरे कोर में उन्होंने बोला कि आप सब जगह जाके खुद कराओगे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसी चीज जिसको मैंने खुद किया नहीं था, सिर्फ उसको मैं प्रैक्टिकली कर रहा था कि भाई अपने लिए अपना स्ट्रेस दूर रखता था, खुद को खुश रखता था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई उनके द्वारा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस बीच में उनको उनका एक इकलौता बेटा भी था जो एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, और उस समय वो खुद बहुत सदमे से गुजर रहे थे, लेकिन वो जनरल ऑफिसर हैं, वो तो एक मतलब उनको एक रखना पड़ता है सामने की तरफ, एक पूरे उनकी फॉर्मेशन उनकी तरफ देख रही है। तो मैंने बोला सर मैं जोधपुर जब प्रोग्राम करने आ रहा हूं तो मैं आपके घर आऊंगा और मैम से मिलूंगा। मैं जब उनके घर गया तो मैम तो देखो एक माँ है, उन्होंने अपने यंग जवान बेटे को खोया है। तो जब मैं मैम से मिला तो मैंने बोला मैम कोई नहीं, बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, परमात्मा आपके सदा साथ है, जरूर आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। आज उनकी बाद में वो वहां से ओटीए चेन्नई गए थे एज कमांडेंट, और उनकी 2 बेटियां हैं आज उनके पास, बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, परमात्मा ने उनको बहुत कुछ दिया है। आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा, उन्होंने मेरे को सारे फॉर्मेशन में भेजा लेकिन मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उनसे बोला सर हमारे इस संस्था में बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं, सिस्टर शिवानी को तो आज सब पूरी दुनिया जानती है, तो हम उनको बुला के ये सारे प्रोग्राम्स कराएंगे। जनरल मैथ्यूस बोले विकास मैं ये नहीं चाहता, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई संस्था का आए भाई हमारे पास, मेरे लिए शिवानी भी तुम ही हो, जो भी हो तुम ही हो। तो बोला तुम ही करोगे ये सब काम। तो मैंने फिर उस दिन से ये समझा कि शायद ये भगवान कराना चाहता है, और मैंने ये सोच लिया कि शायद बिना साड़ी पहने भी मैं एक बहन बन जाता हूं और ये कार्यक्रम कराऊंगा। तो तब से ये भगवान ने जैसे बोलते ना वो ताज मेरे सिर पे रख दिया, और मैं ये सारे फिर फॉर्मेशन में गया, कैसे सीखा वो भी उसके पीछे कहानी है, वो शायद अगर कभी टाइम मिलेगा मैं बताऊंगा कि जो उसको कराना होता है वो करा सकता है, हर चीज करा सकता है, सर्वसमर्थ हमारे साथ सदा है। आगे हम संजीव भाई से सुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, ओम शांति।
थैंक यू विकास भाई। संजीव भाई जी मैं आपसे जरूर, हमारे ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो आज सिक्योरिटी विंग में हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं ये सिर्फ 4-5 दिन के कोर्स के लिए आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि 4-5 दिन के लिए कोर्स के लिए हम यहाँ माउंट आबू हेडक्वार्टर में आए हैं, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, सब जगह पीस है, शांति है, लेकिन जब 4-5 दिन के बाद हम अपने घर में जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, तो क्या तब भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को और मेडिटेशन को हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ सब कुछ अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब घर वापस जाएंगे तो शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपने कैसे इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जगह दी, और हमारी ऑडियंस भी कैसे अपने को उसी एनवायरमेंट में फिर से वहां पर बनाए रख सकती है?
भाई ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे फॉलो करेंगे, और नहीं अच्छा लग रहा तो भी फॉलो करेंगे, क्योंकि फौज है भाई। नहीं, हम जो अच्छा नहीं लग रहा था उसको भी फॉलो करने के इतने अभ्यस्त हैं, तो जो अच्छा लग रहा है उसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे ना। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि यहां एनवायरमेंट है, यहां आप अकेले ही तलवार चला रहे हैं और शीशे के आगे ही तलवार चला रहे हैं, वहां सामने वाला भी तलवार चला रहा है और उसको आपसे ज्यादा अच्छी तलवार चलानी आती है, ठीक है। आप पहले तलवार चला रहे थे, यहां 4 दिन के अंदर आपको ढाल दे दी है। क्या दे दी है? ढाल। आपने बस जब भी कोई तलवार चलाए ढाल रख लेनी है, बाबा भोलेनाथ तू आगे आ जा, परमात्मा तू आगे आ जा, जब भी कोई कुछ कहे तो ऐसा कहना तेरे को ही कह रहा है, मुझे तो कह ही नहीं रहा। तो ऐसे हटते हटते कुछ 2-4 तो छोटे पॉइंट उठाने, पहले 1 हफ्ता आपको आप ही का मन बार बार जोर देगा, पहली बार जैसे ही जाएंगे आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी हो सकता है रेलवे स्टेशन पे जाते ही कोई मिल जाए और आपको गुस्सा आ जाए, फिर एकदम आपके अंदर से आवाज निकलेगी, आपके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्तित्व आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो आपका नाम लेके बोलेगी, संजीव ये सब कहने की बातें हैं, ये सफेद साड़ी वाली बहनें वहां 24 घंटे बैठी रहती हैं, वो शांति से रह सकती है, कमबख्त मुझे कोई शांति से नहीं रहने देगा। फिर आगे घर जाएंगे, घर का वातावरण ऐसे चलता जाएगा। लेकिन उस समय ये कुछ 3-4 दिन 5 दिन आप इसको कंटिन्यू करने लग जाएं और हफ्ता तक जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे वो आपके संस्कार में शामिल हो जाएगा, संस्कार में शामिल हो जाएगा। जो अब तक आपने किया वो भी तो आपकी आदत बनी है ना। अरे आप एक चप्पल पे भी टेढ़े करके चलते हैं पैर, तो चप्पल भी दूर से पहचानी जाती है, मेरी है इधर से टेढ़ी है नहीं, तो आदत चप्पल किसने बनाई, चप्पल तो सही आई थी, एक तरफ से खड्डा आपने करा ना, तो अब हम दूसरी तरफ से खड्डा करना सिखा रहे हैं कि भाई अच्छे तरीके से भी ऐसे चलना है। तो आपने आदत डालनी है, बता आपको दिया, ये ड्राइविंग स्कूल है कार का, आपको कार चलानी सिखा दी, स्टीयरिंग बता दिया, रोड पे तो आपको ही चलानी है, एक आधी बार दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे कोई आपको ठोकेगा, कभी आप किसी को ठोकेंगे, तो ठुकते ठुकाते धीरे धीरे कार चलानी आ ही जाएगी, बची जाएगी नहीं, अगर चलानी है रोड पे तो कार चलानी है तो बच के निकलना है ना, जब जगह जगह से आपको समझ आ जाएगा सामने से बस आ रही है और गलत भी आ रही है, तब भी मैंने को अपनी स्कूटी साइड रखनी है, ये नहीं बताना कि वो गलत है, वो निकल जाएगी। तो ये चीजें आप इसको कंटिन्यू करें और अच्छी लगने वाली बात है। एक 2 मिनट का एग्जाम्पल अगर आप इजाजत है कि 1.5 मिनट बार्गेनिंग है, 1 मिनट, तो 1 मिनट का एग्जाम्पल ये है कि आप बाहर निकलना, मैं सबको बताऊंगा, 1 मिनट में इतना ही बता सकता हूँ, नहीं नहीं बाहर निकल के बताऊंगा, तो इसी बहाने मिल जाएंगे ना सारे मुझे। ओम शांति।
थैंक यू संदीप भाई। पैनल डिस्कशन में समय अभी बहुत कम है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन मैं ब्रिगेडियर हरबीर भाई से पूछना चाहूंगी। भाई साहब, हमने आप ही के मुख से कई बार पुलवामा अटैक के विषय में सुना है, और पुलवामा अटैक आप सबको मालूम है, उस समय हमारे काफी आर्मी के ऑफिसर्स को जरूर मिलिटेंट्स ने बहुत गोलियों का सामना करना पड़ा था, और जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे संजीव भाई से कि परमात्मा गोलियों से फौजी को जरूर बचाता है, तो आपका वो पुलवामा का जो अनुभव है कि कैसे आप उन गोलियों से बचे और कैसे आध्यात्मिक ज्ञान ने उस समय भी आपको बहुत हेल्प की, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे 5 मिनट में भाई साहब।
थैंक यू बच्ची। जैसा आप सबको पता होगा, दो ये बुरहान वानी का नाम सुना सबने, बुरहान वानी 8 जून 2016 को उसके मारा गया था उसको, और उसके एक साल तक वैली में काफी डिस्टर्बेंस आई, बहुत सारे टेररिस्ट बन गए थे, और 2017 और 18 ये एक ऐसा टाइम था जब आतंकवाद पीक पे था, और उस टाइम पे मैं एज ए ब्रिगेडियर राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांडर साउथ कश्मीर में मेरी नियुक्ति थी सोफिया में, सोफिया पुलवामा बड़गांव ये इलाका मेरे नीचे आता था, हमने काफी ऑपरेशन किए, और उस टाइम भी बाबा की ऐसी एक वो थी कि जिस भी ऑपरेशन में हम जाते थे वहां पे ऑपरेशन क्लीन, फौजियों को हमारे कोई इंजरी नहीं होती थी, और टेररिस्ट कम से कम टाइम में सारे टेररिस्ट को हम ऊपर भेज देते थे, और ये पूरी नदन कमांड में एक प्रकार से ये हुआ कि इस सेक्टर में कोई तो जादू है, पता नहीं क्या होता है कि यहाँ पर हर चीज करेक्ट होती है और अपनी कोई इंजरी नहीं होती, और इनका एकदम प्रिसिजन से काम होता है, तो ये सब चल रहा था काफी, हर ऑपरेशन में मैं जाता था, काफी बार गोलियां ऐसे नजदीक छू के निकल गई और काफी बार बचते रहे लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होते रहे। फिर पुलवामा के बारे में आप सबको पता है, 14 फरवरी 2019 एक एक्सप्लोजिव से भरी कार आतंकवादियों ने सीआरपी की बस से टकराया और हमारे 42 जाबाज शहीद उसमें हो गए थे। उसके बाद हम मैं वहां पर सेक्टर कमांडर था, तो मेरे सेक्टर के साथ में ही था ये इलाका जहां हुआ था, तो हमने पूरी जोर शोर से इन आतंकवादियों की जो खबर हासिल करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। इसी दौरान मेरे घर में कुछ फंक्शन था, मैं 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया 16 फरवरी के आसपास, और 17 को रात को ये जो 5 आतंकवादी थे जो जिन्होंने उसको पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये हमारा पुलवामा में एक इलाका में पिंगलाना गांव है, वहां पर एक गांव में ये कॉर्डन में आ गए थे। और 17 को जब रात को ऑपरेशन चल रहा था, तो रात को मैं नॉर्मली अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाता हूँ, तो सुबह जब मैंने फोन स्विच ऑन किया तो काफी सारे 30-40 मैसेज मिस्ड कॉल ये वो काफी कुछ था। तो उसमें मेरे को पता चला कि ये 5 आतंकवादी हमारी एक यूनिट 55 RR उसने कॉर्डन में लिए हुए हैं। रात को ऑपरेशन शुरू कर दिया था और अभी तक आतंकवादी कोई मरा नहीं है, लेकिन हमारा एक मेजर ढोंडियाल शहीद हो गया है और हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो जैसे ही ये मेरे को खबर लगी तो मैं हमेशा अपनी यूनिट या जहां भी होता हूं मैं हर एक को अपना परिवार का सदस्य मान के चलता हूं, जैसे ये मेरे फैमिली के मेंबर है। तो जब मेरे को ये पता चला कि फैमिली के 4 सदस्य चले गए हैं, तो मैंने तुरंत वो अपना छुट्टी कैंसिल किया और घर का फंक्शन भी छोड़ा और दिल्ली से नेक्स्ट जो फ्लाइट थी पकड़ के वापस में श्रीनगर पहुंच जाता हूं। तो जब वापस आता हूं उस टाइम पे ये ऑपरेशन चल ही रहा होता है, तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट जहां ऑपरेशन चल रहा था वहां पहुंच के अपना ऑपरेशन का चार्ज लेता हूं। और इसमें हमने फिर दोपहर के बाद तक 4 आतंकवादियों को खत्म कर दिया था और एक आतंकवादी अभी बचा हुआ था। और इस दौरान ये आतंकवादी जहां हमने सोचा था वहां ना हो कि ये किसी दूसरे घर में निकल के चला गया था ये। और इसने जब हमारी मेरी पार्टी खड़ी थी वहां से तकरीबन 15 मीटर दूर ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे छुपा हुआ था, और एक पार्टी थी एक पुलिस की जो आउटर कॉर्डन था वो तकरीबन 100 मीटर पीछे थी। और जब हम उस ट्रॉली के सामने से निकले तो हमको तो नजर नहीं आता ये, लेकिन इसने सोचा कि ये तो अभी मेरे को मारने फौजदार नजदीक आ गई है, तो इसने तुरंत उठ के हमारे ऊपर AK-47 से फायर करना स्टार्ट कर दिया और पूरा 32 राउंड उसने तकरीबन 8-10 सेकंड में हमारे ऊपर पूरा फायर किया और उसको तो तुरंत मार गिरा हमने उसको फायर होते ही। और इसकी फायरिंग में एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, एक पुलिस का DIG अमित कुमार IPS उसको पेट में गोली लगी और वो भी गिर गया। एक मेरा मेजर था उसके दोनों पैरों में गोलियां लगी, उसकी दोनों टांगे कट गई गोली से, वो भी गिर गया। एक मेरा QRT जो मेरा प्रोटेक्शन था जवान उसको भी एक थाई में गोली लगी और थाई उसकी फ्रैक्चर हो गई। और तो हम ये जित कैजुअल्टी थी इन सबको हम आगे मैसेज पास करके भाई हेलीकॉप्टर भेजो और इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जो कैजुअल्टी हुई है। ये सब चल रहा था, हेलीकॉप्टर आया फिर इनको हमने भेजा। और ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मेरे को भी ऐसे कुछ खुजली टाइप पैर में, पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखा तो मेरी भी एक गोली पैर के आर पार निकली हुई थी और दोनों तरफ से जो है खून निकल रहा था पैर के अंदर। और फिर मैं भी तकरीबन 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा, फिर रिकवरी हुई। इसमें मैं एक चीज जो अंडरलाइन करना चाहूंगा कि देखो कैसे जो ऊपर वाला कैसे गोलियों से बचाता है, कि मैं एयरपोर्ट से गया था तो सिविल ड्रेस में था, मैं कोई बुलेट प्रूफ पटका नहीं पहना हुआ था, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। बाकी जितने भी नुमाइंदे जो ऑपरेशन पर थे उन सबने पूरी बुलेट प्रूफ जो किट होती है हमारी वो पहनी हुई थी, और मैं उस टेररिस्ट के सबसे नजदीक था क्योंकि वो हमारी पार्टी को देख के उसने फर्क तकरीबन मुश्किल से 10 मीटर के आसपास फैसला रहा होगा और उसका एम भी हमारी तरफ ही था और वो तो पार्टी बहुत पीछे थी। तो कैसे बाबा ने बचाया कि आप कोई बुलेट प्रूफ नहीं किट पहना हुआ है और गोली लगी वो भी बिल्कुल पैर में ऐसी जगह की जहां आपको ज्यादा डैमेज नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है बाबा वो हेल्प करता है अगर आप साथ लेके चलते हैं तो। और जब सुप्रीम को साथ ले लिया तो उस वो काम परफेक्ट होना ही होना है, और सुप्रीम को साथ लेना बहुत आसान है क्योंकि वो तो हमेशा साथ आने के लिए तैयार है, वो तो हर पल हर सेकंड साथ आने के लिए तैयार है, देख रहा है हमारी तरफ, सिर्फ हमने साथ लेना है। जय हिंद, ओम शांति।
ओम शांति। तो हम ऐसा समझते हैं आज के इस डिस्कशन से जरूर आपके मन में जो पिछले 3 दिन से क्वेश्चन चल रहे थे वो जरूर समाप्त हुए होंगे, क्योंकि ये 3 जो हमारे आज के गेस्ट हैं ये फौज में रहते हुए पुलिस में रहते हुए अगर इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं। जैसे आप सिलेक्टेड हो यहाँ आने के लिए, परमात्मा के घर से आपको सिलेक्ट किया गया है, ऐसे ये भी बहुत बहुत सिलेक्टेड हैं, भगवान के चुने हुए रत्न हैं जिन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में शामिल किया। तो ऐसे ही आपको भी जरूर अपने जीवन में इस राजयोग मेडिटेशन को बनाए रखना है। आप हमेशा
खुश रहें, यहाँ से जाने के बाद भी आपकी लाइफ ऐसी ही पीसफुल चलती रहे, हम सभी के आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, ओम शांति। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी सीट पर ही पूछ सकते हैं, माइक आपके पास आ जाएगा। अभी कोई और है जो पूछना चाहें? चलिए, तो हरबीर भाई, ऐसा लगता है सबके क्वेश्चन हमारे इस पैनल डिस्कशन में कंप्लीट हो गए हैं, कवर हो गए हैं, तो अभी हम प्रसन्नचित रहना है। संजीव भाई कह रहे हैं प्रसन्नचित नहीं रहना है, प्रसन्नचित रहना है। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या